जोहार श्रोताओं, हम हाजिर हैं मैं कुछ भी कर सकती हूँ की अगली कड़ी लेकर। आइए सुनते हैं इस कड़ी में क्या होता है।
कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब।
पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की प्रस्तुति, यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड का सहयोग और बॉम्बे लोकल पिक्चर्स द्वारा निर्मित।
उधर प्रतापपुर के किसी एक कोने में एक और घर में एक बच्ची बाल विवाह की शिकार होने वाली थी। टीवी रिपोर्टर नीति उस बच्ची के घर के बाहर से छुपकर ये पूरा खेल कैमरा पे रिकॉर्ड कर रही थी। 12 साल की बच्ची मीठी को देखने एक लड़का और उसके साथ उसकी माँ आई थी।
नाम क्या है तुम्हारा?
मीठी।
चलो मुंह खोलो। दांत काले हैं?
बचपन से ही। चल के दिखाए।
हाँ, पर उसके पहले अपने पैर दिखाओ।
गिन लीजिए, दोनों पैर में 5-5 उंगलियां हैं। बस पीठ नहीं दिखा सकते, बहुत बड़ा दाग है। माँ ने छुपाने को बोला था।
क्या हमसे धोखाबाजी कर रहे हैं? चलो बेटा, ई लड़की नहीं देखना हमें, गंगा यादव की बेटी को देखने जाते हैं।
हाँ हाँ, चलो चलो फिर चलो।
मीठी इस बात की खुशी मना रही थी कि हर बार की तरह इस बार फिर उसने लड़के और उसके परिवार वालों को भगा दिया। मीठी एक ऐसी बच्ची थी जो स्कूल में पढ़ना चाहती थी। उसे लगा कि लड़के वालों को भगा कर वो बच जाएगी, लेकिन उसकी खुशी बहुत छोटी थी।
ये, अरे वाह, मजा आ गया, हमने भगा दिया लड़के वालों को। दांतों पे काजल और पीठ पर दाग का बहाना।
मीठी।
बाबूजी।
तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा ये खेल हमें समझ नहीं आता?
बाबूजी, हमें ब्याह नहीं करना।
तुम्हारा ब्याह तय हो गया है, खेल खेलना बंद करो, आज ही रात को तुम्हारा ब्याह होगा।
लेकिन बाबूजी, हम ब्याह नहीं करेंगे।
वो लोग कल देख के गए थे, उन्होंने हाँ कर दिया है। लड़का सरकारी नौकरी में है, कल ड्यूटी पे शहर जा रहा है, इसलिए ब्याह आज ही होगा।
नहीं बाबूजी।
खिड़की के बाहर कौन है? कौन है? अरे किसी ने सुना? देखो कौन है वो, देखो। अरे रुको।
नीति किसी तरह अपनी जान को बचाकर वहाँ से भाग निकली। मीठी की कहानी वो दुनिया के सामने लाना चाहती थी। ये जोखिम भरा खेल था। वो इस बच्ची मीठी के ब्याह को रोकना भी चाहती थी। वो मदद मांगने मुन्ना के पास आई।
अरे नीति मैडम, आपको चोट कैसे आई?
अरे क्या बताऊँ मुन्ना, बिना कैमरामैन के अकेले शूट करना बहुत खतरनाक है।
मुन्ना हर लड़की की मदद के लिए तैयार रहता है, पर प्रॉब्लम पता है क्या है?
क्या?
हर लड़की यहाँ खुद को झांसी की रानी समझती है। किसी को मुन्ना की मदद ही नहीं चाहिए।
ओफो, आप ना बस किसी तरह एक कैमरामैन का इंतजाम करवा दो मुन्ना भैया, ये कहानी शूट करना बहुत जरूरी है।
कौन सी कहानी?
देखिए, एक बच्ची है मीठी, 12 साल की। उसके माँ बाप उसका जबरन ब्याह कराना चाहते हैं और वो बेचारी स्कूल जाना चाहती है।
बाप रे बाप, इस सब चक्कर में मत फंसिए आप।
अरे मैं डरपोक नहीं हूँ मुन्ना भैया, मुझे बस उस लड़की के ब्याह को रोकना है।
अरे खतरे वाला काम है ये, आपको पता है ना शादी ब्याह की यहाँ क्या अहमियत है। आप मेरी मानिए, ये सब में मत पड़िए।
अभी तो आप इतनी सेखी बगार रहे थे कि मुन्ना हर लड़की की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है।
हाँ वो
तो कहाँ गई आपकी मदद?
बताइए कैसी मदद करें, हम चले आपके साथ।
नहीं नहीं, मुझे ना बस एक कैमरामैन दिलवा दो, हम सारा काम खुद ही कर लेंगे।
है ना, कैमरामैन है, बबलू फोटोग्राफर।
अच्छा,
वो यहाँ के हर घर में शादी ब्याह के फोटो खींचता है। हो सकता है आज उस बच्ची के घर भी वही जा रहा हो, आप बस उसको पकड़ लीजिए।
ये हुई ना मुन्ना वाली बात। अब देखो हम कौन सा खेल खेलते हैं।
शायद नीति और मुन्ना के प्रयास से मीठी की शादी रुक जाए, पता नहीं आगे क्या लिखा था। लेकिन हाँ, मैं इस बात से खुश थी कि गौरी ठीक हो चुकी थी और उसके अंदर आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं थी। उसका भाई उसके साथ था।
कैसी हो गौरी?
ठीक हूँ।
आप गौरी के भाई हैं?
जी, नमस्ते।
ये क्या है, आज तो मुस्कुराने का दिन है गौरी, हम तुमको डिस्चार्ज करने वाले हैं।
लौट के जाना है, पर
उस आदमी के घर में नहीं जाना है दीदी, जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई, जो एक बार भी तुमसे यहाँ पर मिलने नहीं आया, पर तुम्हारी तनख्वाह के लालच में थाने तक चला गया। मैं तुमसे छोटा हूँ दीदी, पर हिम्मत बहुत है मुझ में, तुम मेरे साथ रहोगी।
काश तुम्हारे जैसा भाई भगवान हर बहन को दे गौरी। तुम एक नई ताकत के साथ इस अस्पताल से बाहर कदम रखोगी। घरेलू हिंसा औरत के हिम्मत और हौसले को तोड़ने के लिए की जाती है, उसे सहना भी उतना ही बड़ा गुनाह है। तुम्हारे भाई की तरह अगर हर भाई या पिता सुरक्षा के लिए सामने आ जाए तो औरत का हौसला कभी नहीं टूटेगा। और सबसे बड़ी ताकत तुम खुद हो, ये हमेशा याद रखना। ये तुम्हारे डिस्चार्ज पेपर्स हैं, मैंने साइन कर दिए हैं।
जी, आपकी और मुन्ना की बहुत याद आएगी।
और सुना है मुन्ना को तुमने कुंग फू कराटे भी थोड़ा थोड़ा सिखा दिया है, अब वो हर लड़की का बॉडीगार्ड बन गया है। गौरी और मेरे बीच डॉक्टर और मरीज का रिश्ता नहीं था, हम दोनों एक डोर से जैसे बंधे हुए थे। खैर, खुशी थी मुझे कि गौरी का आज डिस्चार्ज हुआ, लेकिन अंदर ही अंदर अभी तक डॉक्टर सुमित की बेरुखी मुझे परेशान कर रही थी। मैं डॉक्टर सुमित के पास पहुंची। डॉक्टर सुमित, किस बात का गुस्सा आप मुझ पर निकाल रहे थे?
स्नेहा, या तो तुम जिम्मेदारी लिया मत करो, या ली है तो पूरी तरह निभाया करो।
मेरी ड्यूटी क्या है मैं जानती हूँ, गौरी का डिस्चार्ज 2 घंटे बाद भी हो सकता था।
तुमने क्या समझ रखा है स्नेहा, कि ये तो बस ऐसे ही एक छोटे से शहर का छोटा सा अस्पताल है, यहाँ जो मन करेगा वो कर सकती हो?
डॉक्टर सुमित, आपको कोई हक नहीं बनता कि आप इस तरह से मेरे बारे में बात करें। मैंने कहा ना कि कोई जरूरी पर्सनल काम था जिसकी वजह से मुझे निकलना पड़ा, और जिस तरह से आपने फोन पर मुझसे बात की वो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ।
मैं भी किसी डॉक्टर की लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकता। इस हॉस्पिटल के कुछ रूल्स हैं जो हर किसी के पर्सनल लाइफ से ऊंचे हैं। और वैसे भी ऐसा कौन सा पर्सनल काम आ गया था आपको कि बिना मुझे इन्फॉर्म किए आप निकल गई?
मेरी निजी जिंदगी से आप दूर ही रहिए।
तुम कुछ ज्यादा ही जज्बाती बन रही हो स्नेहा।
आप मुझे मजबूर कर रहे हैं डॉक्टर सुमित। देखिए, हर रिश्ते की अपनी एक मर्यादा होती है, उस मर्यादा को पार ना करें तो बेहतर है। आगे से ये बात याद रखिएगा डॉक्टर सुमित। मेरे लिए हर रिश्ते की एक परिभाषा रही है, हर रिश्ते के दायरे रहे हैं। डॉक्टर सुमित और मैं एक समय में दोस्त थे, बस इतना ही था। अगर उनके मन में मेरे लिए भावनाएं थी तो वो एक तरफा थी। अतीत के उस पन्ने की जगह मेरे आज के किताब में कहीं थी ही नहीं। मेरी इस डायरी के बाकी पन्नों में है आगे की कहानी, जो कभी अधूरी है तो कभी पूरी। अगली कड़ी में हम फिर मिलेंगे।
श्रोताओं, भले ही बाल विवाह कानूनन जुर्म है, लेकिन आपको क्या लगता है कि हमारा समाज जब तक इसके खिलाफ कदम ना उठाए, आवाज ना उठाए, तब तक यह प्रचलन रुक सकता है? हमें अपना जवाब दें नंबर 3 दबाकर, और कल शाम 8 बजे सुनना ना भूलें इस धारावाहिक पर आधारित चर्चा। मैं